सिलसिले न सबको फरामोश नहीं करते। और शाम के उस दरबार में जहाँ आपको उन तमाम जाहिलों के सामने, जहाँ हर मुल्क से कुछ नुमाइंदे आए हुए थे और बहुत ही बड़ा ड्रामा रचाया हुआ था, ये बताया हुआ था ये कौन लोग हैं, तो उन सारे ड्रामों को ख़त्म करना था और हकीकत लोगों के सामने बयान करनी थी और इमामत के नूर से लोगों को मुनव्वर करना था। वहाँ कहा, मन आरफनी फ़कत आरफनी, जो मुझे जानता है तो सो जानता है, वन लम ये आरफनी अम्बअतुहू, मैं उन्हें ख़बर देता हूँ, बेहसबी व नसबी, इतने फ़ख्र से मैं अपना हसब व नसब बताता हूँ, अय्युहन्नास अना इब्नु मक्का व मिना, अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा, अय्युहन्नास अना इब्नु मुहम्मदिन मुस्तफ़ा, अना इब्नु खतीजतुल कुबरा। इस अंदाज़ से सिलसिले में आना यकीनन गैर मामूली, मेरी मामूली बात नहीं और बहुत बड़ी फजीलत है। शायद कुछ हमारे नाज़रीन कहेंगे, ये क्या बार बार इसी नुक्ते को आप तकरार करें, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो मैं कह रही हूँ, इससे और बड़ी बात है क्या?
सही बात है कि पंजतन अपने आप को खदीजा से मंसूब करना चाहें
चाहें।
और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने नोट की कि इमाम हुसैन ने कुफ़ार के, जिस तरह एक जगह आपने बताया इमाम हसन ने माविया के सामने
जी
खदीजा के ज़रिए से अपने आप को मुतारिफ़ किया,
जी जी
इमाम हुसैन ने वाक़े करबला में एक दफ़ा फिर ऐसे ही लोगों के सामने, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी उसी चीज़ को ही दोबारा तकरार किया।
बिल्कुल
गोया वो अपने आप को ख़ुद मंसूब कर रहे हैं और अपनी फजीलत का इज़हार उनके नाम के ज़रिए से करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल
बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद कोई दूसरे मासूम जिन्होंने इस सीरत को अपनाया हो और इसको जारी व सारी रखा हो?
यकीनन हर मासूम ने सिलसिले नसब में तो रखा है, लेकिन उससे हटकर हमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का एक जुमला तारीख़ में मिलता है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का, और इमाम असर इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ का भी। बहुत मुख्तसर सा कि जहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जद्दा वो है, खदीजा वो खातून है जो ख़वातीन, पहले तो कुरैश की सैयदा थी और फिर सैयदा बनी, और जिसके रिश्ते उस ज़माने के तमाम रुअसा और अमीरों ने भेजे, और लेकिन मेरी जद्दा ने अपनी आइंदा निगरी की वजह से नहीं, और बसीरत की वजह से, बाकायदा इस तरह से कह रहे हैं कि अपनी उस बसीरत की वजह से नबी को अपनी ज़ौजियत में लिया, क्योंकि वो पैगंबर के मुतालिक बिशारतों को कुतुब आसमानी से जानती थी।
माशाल्लाह,
यानी ये इतनी बड़ी, दोबारा मैं कहूँगी, फजीलत है उम्मुल अफाइफ के लिए, सैयदतुल अफाइफ के लिए, कि ये नहीं हमारी तरह नहीं कि जैसे सिर्फ सुन रखा है जी कि एक आखिरी इमाम आने वाला है, जैसे मैं और आपने भी सुन रखा है, सुनने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि जब सुना और ज़्यादा तहकीक की और ज़्यादा मुतालिया किया, और मुतालिया करने के बाद यकीन की मंजिल तक पहुँची, यकीन की मंजिल तक पहुँची तो तमाम बुतों को तोड़ते हुए उस हुस्न तक, उस आखिरी नबी तक पहुँचने की कोशिश की, और फिर उसी वजह से आपने सबको ठुकराया और उस दुनिया और आखरत की कमाल और हुस्न से वाबस्ता हो गई।
बहुत खूबसूरत जी। यानी कहने का मकसद ये है कि हमें भी जस्तजू करनी चाहिए।
बिल्कुल, यानी सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं, अगर हम सुनने के बाद अपने आप को यकीन की मंजिल तक पहुँचाएँ तो फिर पता चलेगा, जब आने वाला आएगा हमारे ज़माने में भी, तो फिर पता चलेगा कि कौन खतीजा वार, खतीजा की तरह लब्बैक लब्बैक कहता हुआ अव्वलीन तस्दीक करने वालों में से होगा, कौन साबिकून साबिकून की फहरिस्त में अपना नाम लिखवा सकेगा।
बहुत खूबसूरत। जहाँ पर आपने ज़िक्र किया है इमाम सादिक का, वहाँ पर इमाम हसन अस्करी से कोई रिवायत आपके?
जी हाँ, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की भी मुनाजात है। बात इतनी हसीन है, ख़ूबसूरत है कि आपने भी अपनी मुनाजात में अपनी जद्दा को, माँ खदीजतुल कुबरा को याद रखा है। क़ुरबुल सनद जो किताब है उसके सफ़ा नंबर 325 में यूँ मिलता है, फ़सल्ला अलैहा वअला उम्मिहा खदीजतुल कुबरा, के खुदाया फ़ातिमा और उनकी माँ खदीजतुल कुबरा पर दुरूद भेज, दोनों को याद रखा, खदीजतुल कुबरा बाकायदा कहा, जो कि एक ऐसी हस्ती हैं जिसने मकाम रसूल को नहायत उस दौर में मोहतरम जाना, जिसके ज़रिए ज़ुर्रियत रसूल की आंखें रोशन हुई। یعنی وہ واحد ہستی کہ جس نے ذریت رسول کو نہ صرف ادامہ دیا بلکہ ان کے وجود سے ابھی تک معصومین اپنے آپ کا تعارف کروا رہے ہیں. اور آخر میں امام عصر و زمان کا.
اچھا امام زمانے سے بھی ملتا ہے؟
جی ہاں, وہ دعائے ندبہ. دعائے ندبہ تو آپ یقیناً اس کی معرفت رکھتی ہیں, اور آپ کو معلوم بھی ہے
ہر جمعے کو پڑھنا چاہیے
کہ ہاں وہ امام عصر کے ہی کلمات ہیں.
جی
آپ نے ہی فرمائے, ان سے ہی ہے. ندبہ کا مطلب کیا ہے؟ گریا کرنا. کہ آپ کہتے ہیں رو میرے فراق میں. اگر ہماری معرفت ہو, ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس کو مس کر رہے ہیں, معرفت بڑھے گی تو پھر رونا آئے گا. ابھی تک ہم نے مس ہی نہیں کیا, یعنی ہمیں احساس جدائی اور احساس نہیں ہے اس بات کا کہ کس چیز سے ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. تو مولا نے ہمیں احساس دلانے کے لیے کہا کہ ندبہ کرو, یعنی تم معرفت کی اس منزل پر پہنچو کہ تمہیں احساس ہو کہ تم کس نور سے محروم ہو. اب اس نور کی محرومیت پر رو گریا کرو. گریا کرتے ہوئے یہاں پر اس مقام پر آ کر وہ صفت جس کا ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی ذکر کیا ہے, کہا کہ اینا ابن نبی المصطفیٰ وابن علی المرتضیٰ وابن خدیجۃ الغرا وابن فاطمۃ الکبرا. تو یہاں پر غرا کی صفت, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, اس کا مطلب ہے بہت بلند مقام والی ہستی, عظیم بلندیوں والا جو شخص ہو اس کو غرا کہتے ہیں. تو کہا یہ غرا ہے جو خدیجۃ الکبرا ہے, اور کہا کہاں ہے وہ جو کہ خدیجۃ الغرا کا فرزند ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے حضرت زینب کے متعلق بھی اور باقی
ہستیاں. انشاءاللہ یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا
یقیناً,
لیکن آج صرف ذکر کرنا تھا اہل بیت ہی کی زبانی.
صحیح,
ان کی زبانی جناب خدیجۃ الکبرا کے فضائل کو. میں آپ کی مشکور ہوں, آپ نے اتنا سارا وقت دیا اور بہت سی باتیں ہمارے اذہان تک پہنچائیں. اور انشاءاللہ کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ بھی اس کو بغور سن رہے ہوں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اور جس طرح ابھی راضیہ نجفی صاحبہ نے فرمایا کہ ہمیں ندبہ اور گریا کرنا چاہیے, ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اس سیرت امام زمانہ کو اپناتے ہوئے اپنی معرفت کو مزید زیادہ کرنے کے لیے اس کردار کو اپنائیں. امید ہے کہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے اور پھر آپ لوگ ہمیں جوائن کریں گے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی سفر کو جاری رکھتے ہوئے. خدا حافظ.
من كان يخشى من ردى ويرجو نهج السؤددى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى فليتخذ من فاطمة وآلها نور الهدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى يصبو سعيدا للمدى من كان يخشى من رجاء